ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 29। तो क्रम के अनुसार आज श्लोक नंबर 27 28 होना चाहिए, इसके बाद 29 होना चाहिए, लेकिन 27 और 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य नहीं लिखा है, इसलिए हम 29 नंबर श्लोक पे 29 नंबर श्लोक की आवृत्ति करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं 27 नंबर श्लोक और 28 नंबर श्लोक पढ़ता हूँ और उसका अनुवाद पढ़ता हूँ, इसके बाद हम श्लोक संख्या 29 पर आएंगे। श्लोक संख्या 27 इस प्रकार है। तस्या अनुचरित उपरिष्टा द्विस्तरिष्यते यस्य भगवान स्वयं अखिल जगद्गुरु नारायणो द्वारी गदापाणिरवतिष्ठते निज जना अनुकंपित हृदयो येना अंगुष्ठेन पदा दस्कंधरो योजना युतायुतम दिग्विजय उच्चाटित। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। श्लोक संख्या 28। ततो अधस्तात्तले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुरा धिपतिर भगवता पुरारिणाम त्रिलोकिस चिकीर्षुणाम निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्त प्रसादा लब्ध पदो माया बिना माचार्यो महादेवेन पुरी रक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। अनुवाद। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक अन्य लोक है जो मैं दानव द्वारा शासित है। मैं इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मैं के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उसने प्रसन्न होकर उनका राज्य लौटा दिया। तब से भगवान शिव मैं दानों की रक्षा करते हैं, इसलिए वह सोचता है कि उसे श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं है। श्लोक संख्या 29। ततो अधस्तान महातले काद्रवेयाणाम सर्पाणाम नैक शीर्षाम क्रोधवशो नाम गढ़ कुहक तच्छक कालीय सुसेणा दिप्रधानाम महाभोगनवंतः पतत्रिराजा धिपते पुरुषवाहादन न अवरत मुद्धिजमानः स्वकलत्रा पत्य सुहित कुटुंब संगेन कचित प्रमत्ता विहरन्ति। शब्दार्थ। ततः तलातल लोक से, अधस्तात नीचे, महातले महातल नामक लोक में काद्रवेयाणाम कद्रु की संतानों का, सर्पाणाम जो सर्प हैं, न एक शीर्षाम जो अनेक फनों वाले हैं, क्रोधवश सदैव क्रोध के वशीभूत, नामा नामक, गणह गण समूह, कुहक कुहक, तच्छक तच्छक, कालीय कालीय, सुसेण सुसेण, आदि इत्यादि, प्रधानाः प्रमुख, महाभोगवंतः समस्त प्रकार के भोगों में लिप्त, पतत्रिराज अधिपते समस्त पक्षियों के अधिपति गरुण से, पुरुषवाहात श्री भगवान को ले जाने वाला, अनवरत निरंतर, उद्विजमानः भयभीत, स्व अपने आप, कलत्र अपत्य स्त्रियों तथा संतानों, सुहृद मित्र, कुटुंब कुटुंबीजन, संगेन साथ में, क्वचित कभी कभी, प्रमत्ताः क्रुद्ध, विहरन्ति विहार करते हैं खेलते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाली कद्रु की संत संतानों का निवास है। इन सर्पों में कुहक तच्छक कालीय तथा सुसेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्व भगवान विष्णु के वाहन गरुण के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु फिर भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों संतानों मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ विहार करते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह बताया गया है कि महातल लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं, यद्यपि उन्हें गरुण का भय बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए आता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थितियों में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पत्नी पुत्र मित्र तथा कुटुंबी जनों के मध्य अपने को सुखी मानता है। ओम अज्ञानतिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम भागवतम चर्चा करने से पहले मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ कि अपना अनुग्रह अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कर सके, ताकि यथाशक्ति मैं भागवतम में कुछ बोल सकूँ। हरे कृष्णा। तो आज हमको तीन श्लोकों पे चर्चा करना है, 27, 28 और 29। तो दो में तात्पर्य नहीं है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं दोनों श्लोकों के भाव को स्पष्ट करना चाहूंगा। तो 27 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्या अनुचरित। तस्या अनुचरित अर्थात महाराज बलि, जिनके चरित्र का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने अभी 8 श्लोकों में किया। पीछे के 8 श्लोकों से हम वर्णन सुनते आ रहे हैं, 18 से लेकर 26 श्लोकों तक चर्चा किया सुखदेव गोस्वामी ने। तो बोलते हैं तस्या अनुचरित। अभी सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हमको आगे अन्य लोगों का चर्चा करना है, इसलिए बलि महाराज का चरित्र का वर्णन मैं आगे के श्लोकों में, आगे के अध्यायों में अर्थात स्कंद 8 में अभी विस्तार से कहूंगा। बहुत सीमित में मैंने अभी बलि महाराज की कथा का वर्णन किया, अब विस्तार से आगे आठवें स्कंद में और वर्णन करूंगा। तस्या अनुचरित उपरिष्टा दिस्तरिष्यते, आगे अभी और वर्णन बाकी है, मैं विस्तार से आगे वर्णन करूंगा। फिर भी निष्कर्ष रूप में बलि महाराज के चरित्र का वर्णन बता देना चाहते हैं। यस्य के द्वारा यस्य शब्द आया है, जिसका वर्णन कर रहे हैं यस्य, जिनका अर्थात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने भाव में। सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं कि मैं बलि महाराज के चरित्र का वर्णन कहां तक करूं, मैं असमर्थ हूं उनकी चरित्र का वर्णन करने में। तो क्यों असमर्थ हैं? तो अपनी असमर्था व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों असमर्थ न हो, कहां तक उनका वर्णन करूं। तो कोई बोल सकता है क्या है उनके चरित्र में, क्या अद्भुत चीज है। तो बोलते हैं बहुत बड़ा अद्भुत चीज है। क्या है? तो बोल रहे हैं भगवान स्वयं अखिल जगत गुरु नारायणो, कि बोले जो भगवान, जो स्वयं भगवान है, अर्थात जो स्वयं समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, स्वयं भगवान अखिल जगत गुरु, जो अखिल जगत गुरु, अखिल जगत गुरु अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड के गुरु, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, समस्त ब्रह्मांड का उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, भगवान स्वयं अखिल जगत गुरु वो कौन है? वो नारायण है। वैसे नारायण भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, वे स्वयं क्या कर रहे हैं? द्वारी गदा पाणिरव तिष्ठते, हाथ में गदा लेकर बलि महाराज के द्वार पर खड़े हैं। हाँ, तो जिन भगवान की महिमा का वर्णन अनंत भगवान अपने अनंत मुख से अनादि काल से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का वर्णन करने में वो थके नहीं, वर्णन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं उनकी महिमा का वर्णन। लेकिन वैसे महिमा मंडित भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण आज हाथ में गदा लेकर एक सामान्य सिक्योरिटी की भांति बलि महाराज के द्वार पे खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए। फिर बलि महाराज का कितना महान कीर्ति है, उनका वर्णन कैसे मैं कर सकता हूं, उनका वर्णन के लिए मैं क्या कहूं। तो क्यों खड़े हैं भगवान उनके द्वार पे गदा लेके? तो बोलते हैं कि निज जन अनुकंपित हृदय, निज जन अनुकंपित हृदय, क्योंकि भगवान का हृदय अनुकंपित दया से भर जाता है। किसके प्रति दया से भर जाता है? बोलते हैं निज जन, जो उनके निजी जन होते हैं। निज जन, भगवान का निजी जन कौन है? भगवान का निजी संबंधी कौन है? भगवान सबसे निकट कौन रहता है? हाँ, तो भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त। तो निज जन अनुकंपित हृदयों, तो अपने भक्तों के व्यवहार से, अपने भक्तों के समर्पण से, अपने भक्तों के भक्ति से भगवान का हृदय दया से भर जाता है। दया से भर जाने के कारण भगवान का हृदय वास्तव में दया से भर गया। भगवान ने जब बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया और बलि महाराज को बंदी बना दिया, बंदी बनाने के बाद भगवान उसको डांटते हैं और बंदी बलि महाराज उनके पास में बैठे हैं, गरुड़ ने उनको बांध दिया है, और उस समय वहां फिर प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी विंध्यावली सब लोग खड़े थे। प्रहलाद जी का आगमन होता है, प्रहलाद जी जब देखते हैं कि भगवान सुनंद आदि भक्तों से घिर के बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो भगवान की स्तुति करते हैं बहुत ही सुंदर शब्दों में और बोलते हैं कि हे भगवान, इस संसार में बलि इंद्र का पद पाके थोड़ा ऐश्वर्य से गर्वित हो गया था, तो इस संसार का ये बलि दोष नहीं है भगवान, इस संसार में ये संसार का दोष है। इस संसार में भौतिक ऐश्वर्य पाके कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है। इस संसार में उच्च कुल में जन्म लेना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा सुंदरता प्राप्त करना, जो भी भगवान के ऐश्वर्य है, यदि भगवान के ऐश्वर्य से थोड़ा मोड़ा किसी का ऐश्वर्य मिल जाता है तो बहुत स्वाभाविक है कि उसके अंदर गर्व आ जाता है, तो अपना हित और वो अहित नहीं समझ पाता है। लेकिन हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी है, आप सबके हित का ध्यान रखते हैं, आपको पता है कि किसके लिए क्या उचित है, तो आप देते भी हैं और आप लेते भी हैं। लेकिन मेरे विचार से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपके देने से आपका लेना अच्छा है, क्योंकि जब आप देते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि इस ऐश्वर्य को पाके अपने आप में अहंकार और मान प्रतिष्ठा की भावना को नहीं आने देते हैं, नहीं स्वाभाविकतः सबके अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है। इसलिए मेरे विचार से आपका लेना दिव्य है, क्योंकि जब आप ले लेते हैं, किसी का ऐश्वर्य ले लेते हैं, तो वो दीनहीन किंचन बना रहता है, वो अपने आप को भौतिक जगत के द्वंद से मुक्त कर पाने में समर्थ होता है, लेकिन आपका देना, जब आप दे देते हैं तो बहुत विरले ही अपने आप को लोग बचा पाते हैं संसार में। तो मेरे हिसाब से आपने जो किया बलि महाराज के लिए बहुत ही उत्तम किया, बहुत ही श्रेष्ठ काम किया। इसके बाद उनके पास में ही उनकी पत्नी भी थी विंध्यावली, उसको भी थोड़ा दया आता है बलि महाराज पे, वो भगवान के पास आती और अपना प्रार्थना बोलती है। 21 श्लोक उन्होंने बोला, एक या 2 श्लोक, और अपने प्रार्थना में कहती है कि भगवान, अज्ञानवश मेरे पति से गलती हो गई, क्योंकि वास्तव में पूरे संसार को आप देने वाले हैं। इस संसार में जिसके पास जो कुछ भी है सब आप देते हैं, आपके द्वारा सब लोग संपन्न होते हैं, लेकिन मूर्खतावश अज्ञानवश कभी कभी लोग अपने आप को भगवान के लिए दाता मान लेते हैं कि मैं भगवान को देता हूं, मैं भगवान को दे सकता हूं। हाँ, बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, कभी कभी लोग आते हैं भगवान को दान देते हैं, हाँ तो 500 का नोट चढ़ाएंगे तो एकदम पूरा दिखा के चढ़ाते हैं कि मैं भगवान कुछ दे रहा हूं, अर्थात भगवान का उससे खर्चा चलने वाला है। लोगों के अंदर कभी कभी ऐसा भाव होता है कि हम भगवान को कुछ दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिखा के भगवान को दान डालते हैं। तो कुछ अज्ञानवश विंध्यावली बोल रही कि अज्ञानवश हालांकि पूरे संसार को आप देने वाले हैं, लेकिन अज्ञानवश लोग सोचते हैं कि मैं भगवान कुछ देने वाला हूं, मेरे देने से भगवान की पूर्ति हो जाएगी। और बलि महाराज से ऐसा ही थोड़ा गलती हो गया, हालांकि सब ऐश्वर्य आपने प्रदान किया है, लेकिन बलि महाराज ने आपको दान देना समझा कि उनके बस की बात है। क्योंकि आप प्रसंग पढ़ेंगे तो बलि महाराज बोलते हैं, अरे आप मांगने आए हो तो तुमको कम से कम समझना चाहिए किससे मांग रहे हो, कितना मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, मैं तुमको क्या नहीं दे सकता हूं, आप 3 पग भूई मांगते हो। हाँ, तो थोड़ा अहंकार में बोला था। तो विंध्यावली को सब याद है कि अज्ञानवश नहीं समझ पाते हैं कि वो आपको कोई क्या देगा, सबको आप देते हैं, सब लोग आपकी कृपा पे जीते हैं। तो गलती हो गई हमारे पति से, अभी आप उनको मुक्त कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भगवान अभी बहुत हो गया, आपने इनका सब कुछ ले लिया सर्वस्व। विंध्यावली एक चीज और बोलती है कि इनका ज्ञान यहां तक है कि जब आप उनको लज्जित करते हैं कि अभी 2 पग में तो मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, 3रा पैर कहां रखूं, तो भी ये देहात बुद्धि में है, उन्होंने बोला कि आप अपना पैर हमारे शरीर के ऊपर रख दीजिए। लेकिन मैं मानती हूं कि इनकी देहात बुद्धि पूरी गई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी उनका नहीं है, ये शरीर भी तो आपका ही दिया हुआ है, आप इसके वास्तविक मालिक हैं। फिर भी अज्ञान में इनका ज्ञान गया नहीं, तो मैं इनके ज्ञान के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं, आप इनको माफ करिए और इनको मुक्त कर दीजिए। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान बहुत हो गया, आपने उनकी सारी संपत्ति ले ली, सारा इज्जत मट्टी मिला दिया, संपूर्ण धैल ले लिया, ऐश्वर्य ले लिया, उसका शरीर भी ले लिया आपने, अभी बहुत हो गया, आप इनको मुक्त कर दीजिए। तो फिर भगवान बोलते हैं इन लोग की प्रार्थना सुनने के बाद कि हाँ ब्रह्मा जी आप सही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए बोल रहे कि ब्रह्मा जी आप सही कर रहे हैं कि वास्तव में ये भौतिक ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति मंद बुद्धि और पागल हो जाता है, वो अपने आप को संहार नहीं पाता है, वो मेरी सत्ता का उल्लंघन करना शुरू कर देता है, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण संपत्ति पहले छीन लेता हूं। लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज को संबोधित कर रहे हैं कि वास्तव में जो आप बात कह रहे हैं कि इस संसार में भौतिक ऐश्वर्य पाके सभी व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, बिरले कोई बचता है, तो यह सही बात है कि संसार में किसी को उच्च धन मिले, ऊंचा सौंदर्य मिले, ऊंचा पद मिले, और पद पाके भी यदि उसके अंदर अहंकार ना आए, घमंड ना आए, तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरी विशेष अनुकंपा होती है। जब किसी पे मैं विशेष अनुकंपा करती हूं तो मेरी अनुकंपा के तहत ही किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड नहीं आ सकता है। नहीं, ये संसार का स्वभाव है, माया जनित संसार है, साधारणतः सभी लोग माया में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं जब किसी पे अनुकंपा करता हूं, किसी पे कृपा करता हूं, तो मेरी कृपा के द्वारा ही, मेरी अनुकंपा के द्वारा ही उसके अंदर उन्माद और पागलपन नहीं आ सकता है। लेकिन साधारणतः सब चीज फंसाने वाले हैं, इसलिए अपने भक्तों को मैं, जब तक वो अपने भक्ति में अचल नहीं है, तो साधारणतः मैं उसको समस्त ऐश्वर्यों से दूर ही रखता हूं, और जिस प्रकार यहां आज 27वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं बलि महाराज के चरित्र पे, तो भगवान को भी बलि महाराज के चरित्र पे थोड़ा आश्चर्य व्यक्त होता है। भगवान बोलते हैं कि इस बलि के ऊपर मेरी अनुकंपा है, मेरी कृपा है। कैसे कृपा है? बलि महाराज को बोलते हैं कि मैंने इसका धन ले लिया, मैंने इसका ऐश्वर्य ले लिया, उसको मौलिक पद से च्युत कर दिया, इसका इसका मैंने बेइज्जत भी किया। भगवान बोलते हैं ना कि तुम धोखेबाज हो, वचन देके मुकर गए। तो भगवान इस श्लोक में ऐसा भी बोलते हैं कि हालांकि मैंने झूठ बोला, क्योंकि अभी मान लो बलि महाराज से भगवान ने कहा कि तुमने मुझे वचन दिया कि मैं तुमको 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन तुम वचन देकर पूरा नहीं कर पाया, तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। तो बलि महाराज चाहते तो प्रश्न कर सकते थे कि भगवान झूठा कौन है, कौन धोखेबाज है, वो आप ही जान सकते हैं। आप मांगने आए तो छोटा छोटा पैर दिखाया, मैं यहां तक बोला कि मैं अपने पैर से दे दूं, तो बोला नहीं मैं अपने पैर से लूंगा। आपने अपना छोटा छोटा पैर दिखाया और जब नापना हुआ तो पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। तो कौन धोखेबाज है, कौन झूठा है, वो आप जान सकते हैं और मैं जान सकता हूं। तो मैंने यहां तक बोला कि तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, तुम धूर्त हो, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। वो सब स्वीकार करते गए, सब स्वीकार करते गए, सब स्वीकार करते गए, और सब कुछ देने के बाद, यहां तक कि सब कुछ ले लिया, उसको बंदी बना लिया, बंदी बनकर मेरे पास में बैठा है, फिर भी कुछ बोला नहीं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। ये आत्मसमर्पण की भावना दिखाई है। इसलिए हे बलि, तुम्हारे इस समर्पण की भावना से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि बिरला ही कोई ऐसा होता है हाँ जो कि इस प्रकार का समर्पण अपने आप में कर सकता है। तो आपके समर्पण की भावना से बहुत मुक्त हूं और मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुमको हाँ ऐसा स्थान दूंगा जो दुष्प्राप मरय रपि, जो कि किसी के लिए प्राप्त करना बहुत ही दुर्जय है, कोई अपने बल पे उसको प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका ऐश्वर्य इंद्र की स्वर्ग को भी मात करने वाला है। मैं तुमको वैसा पद दूंगा, तुम वहां जाओ, उस लोक को विश्वकर्मा ने बनाया है, बहुत ही सुसज्जित लोक है, आप वहां जाओ और वहां जाके सुख और शांति से ऐश्वर्य का भोग करो। और बोलते बोलते भगवान बोल देते हैं कि सुतलम स्वर्ग भी प्राप्त है, गात भी परिवारित है, कि हे बलि महाराज आप वहां जाओ और अकेले मत जाओ, आप सभी अपने कुटुंबी जन और परिवार और असुरों के साथ जाओ और वहां राज्य करो। तो मान लो बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, वैसे तो मैं प्रहलाद महाराज के वंशज का हूं, प्रहलाद महाराज विरोचन महाराज के पुत्र हुए बलि महाराज, और भगवान के प्रति प्रहलाद महाराज की भक्ति, विरोचन की भक्ति बहुत ही बड़ी भक्ति है, उसका वर्णन सब लोग जानते हैं, तो स्वभाव से मैं उस परंपरा से हूं, लेकिन कभी कभी संग में रहने से दोष आ जाता है, तो मेरा जो संगति है इन असरों के साथ मैं रहता हूं, इन असुरों के साथ रहते रहते मेरे अंदर कुछ आसुरी प्रवृत्ति आ गई, जिसके कारण मैं अपने आप जो स्वर्ग पे विजय प्राप्त करते हैं और अपने आप को इतना बड़ा घोषित करते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, क्योंकि आसुर और देव में क्या अंतर है? आसुर और देवता में अंतर यही है कि देवता लोक को भगवान ने जहां निर्दिष्ट कर दिया, उनको स्वर्ग लोक दे दिया, स्वर्ग लोक दे दिया, और स्वर्ग लोक में पड़े रहते हैं बस। जिसको जिस लोक में भगवान ने नियम बना के निर्धारित किया, भैया आपको रहना है यहां, आपको रहना है यहां, आपको रहना है, देवता लोक और ऊंचे के सभी वासी, ऊंचे लोग के सभी वासी सब लोग अपने अपने राज्य में अस्थायी रूप से बने रहते हैं, लेकिन असुर, असुर के लिए भगवान ने बनाया तुम नीचे के लोगों में रहो, यहां रहो, यहां रहो, लेकिन उनको नहीं रहना है। हाँ, उनको सोने की लंका भी मिल जाए तो उनको नहीं रहना है, उनको और ज्यादा प्राप्त करना है, तो वो उपद्रव फानते हैं, वो उपद्रव फानते हैं। तो कहने का आशय कि बलि महाराज भी इस पृथ्वी पे सुखमय शांति में जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग लोक को जीता और उच्च लोगों को भी जीतने का कोशिश किया। तो बताते कि संघ के प्रभाव कारण आया, और अभी आप बोल रहे हैं कि आप सुतल लोक में जाओ और समस्त परिवार और कुटुंबी जन के साथ जाओ, और वहां जाने के बाद फिर मेरी चेतना दूषित हो गई, तो क्योंकि असुर हैं हमको बोलेंगे अरे आप यहां क्यों बैठे हो, विष्णु ने आपको धोखा दिया, आप यहां आ गए नीचे के लोक में आ गए, आप चलो ऊपर, हम फिर युद्ध करते हैं, फिर चुनौती देते हैं, तो फिर मेरी बुद्धि मोहित हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, इसकी चिंता मत करो, आप इसी चिंता मत करो, न त्वाम भी विष्यन्ति लोकेशा किमुत्तापरे त्वच्छा असाति गात्यता चक्रम में सुदयिष्यति। सुतल लोक में इन असुरों की बात तो क्या, सामान्य लोक हो, कोई देवता हो, हाँ कोई असुर हो जिसके आपको डर लगता हो कि हमारा बात नहीं मानेगा, हमारा कहना नहीं सुनेगा, आप उसी चिंता मत करो, मैं वहां खुद गड़ा लेके खड़ा रहूंगा आपके द्वार पे, और जो भी आपके सत्ता का अवमानना करेगा, अवहलना करेगा, आपकी बात को अवहलना करेगा, इसको सुदर्शन से या गता से मार्ग ठीक कर दूंगा। आप जाओ निष्कटंक राज्य करो, कोई आपको असुर दुख नहीं दे सकता है, कोई देवता, कोई सामान्य व्यक्ति के, तुम्हें सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या की जाए। तो आप उनसे डरो मत, असुरों से डरो मत, किसी से मत डरो, आप जाओ और आराम से आप राज्य करो, मैं खुद वहां गदा लेके खड़ा रहूंगा आपकी रक्षा के लिए, देखता हूं कौन आपकी अवहेलना करता है। और उसी क्रम में जो आज के श्लोक बता रहे हैं कि उसी क्रम में रावण दसों दिशाओं को जीतता हुआ वो बलि महाराज के पास भी जाता है, क्योंकि बलि महाराज के विषय में सुना होगा कि वहां का ऐश्वर्य बहुत प्रभावशाली है, स्वर्गलोक से बड़ा ऐश्वर्य है, कोई दुख नहीं है, कोई ताप नहीं है, और बहुत ही सुव्यवस्थित किया गया है, और राज्य किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा सुना, वर्णन उसने सुना होगा स्वर्गलोक पे विजय प्राप्त करने के बाद, तो वो सुतलोक पे भी जाता है विजय प्राप्त करने के लिए। तो युद्ध हुआ कि नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि यहां श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है कि रावण गया, और जैसे कि सामान्य भाषा में हम देख सकते हैं कि जब किसी दो व्यक्ति में झगड़ा होता है तो संभवतः हम लोग ये बोलते हैं दूर से बात करो, सामने आओ मत, दूर से बात करो, दूर से बात करो, सामने नहीं आने देते हैं। और यदि व्यक्ति मान लो नजदीक आने की कोशिश करता है तो फिर धक्का मुक्की हो जाता है, उसको धक्का मारता है, वो उसको धक्का मारता है। तो हो सकता है कि इसी तरीके का संवाद हुआ हो बलि महाराज और रावण में, रावण से बलि महाराज ने पूछा हो, अरे वामन भगवान ने पूछा हो कि भाई क्या काम है इधर इधर तुम क्यों आए, द्वार पे खड़े ही रहते हैं। तो रावण ने कहा होगा कि बलि महाराज से मुझे युद्ध करना है, ये राज्य मुझे हथियाना है। तो मानो भगवान ने उसको धक्का नहीं मारा, क्योंकि हाथ से धक्का नहीं मारा, क्योंकि हाथ से धक्का मारते यदि गुस्से में हाथ से धक्का मारते तो फिर हाँ भगवान ने किससे मारा, यहां वर्णन करता सुखदेव गोस्वामी कि एनांगुष्ठेन, कि अपने पैर के अग्रभाग का जो अंगूठा होता है अंगूठे से उठाकर उसको फेंक दिया। हाथ से क्यों नहीं मारा, क्योंकि हाथ से मारते तो भगवान को पता है कि अभी इसका आगे कुछ लीला बाकी है, आगे कुछ और काम करना है इसके द्वारा। तो इसलिए भगवान ने सिर्फ अंगूठे से उसको टच किया, उठाकर फेंक दिया। और भगवान तो सदैव भगवान है, भगवान की हर कृति महिमा मंडित है। तो भगवान ने उठाकर उसको फेंका, और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कितना दूर जाके गिरा, 80,000 मील, सिर्फ अंगूठे के अग्रभाग से उठाकर उसको फेंका। और रावण जो कि कैलाश को भी हिला दिया था एक बार, हाँ कैलाश को भी उठा लेना चाहता था, कैलाश को भी हिला दिया था, और ऐसे रावण को भगवान ने सिर्फ अंगूठे एंगष्ठ ये ना अंगष्ठे ना कि अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग से उठा के फेंका, और वो 80,000 मील जाकर गिरा, 80,000 मील जाकर गिरा। और सुखदेव गोस्वामी को यही आश्चर्य हो रहा है कि फिर ऐसे बलि महाराज के विषय में क्या वर्णन करूं कि जिनका इतना भगवान सेवा करते हैं, जिनकी इतनी चिंता करते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों सेवा करते हैं। उसके लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि निज जन अनुकंपित हृदयों, क्योंकि भगवान का जो हृदय है अपने शरणागत भक्तों के, जो भगवान को सब कुछ अपना समर्पित कर चुके हैं, ऐसे भक्तों के भक्ति से भगवान का हृदय द्रवित रहता है, भगवान दया से भर जाते हैं, उनकी करुणा उनका दुख उनसे नहीं देखा जाता है। और बलि महाराज को इस दशा को देख के कि वास्तव में कितना बड़ा भक्त है, इसका मैंने कितना दुर्दशा किया, फिर भी ये बैठा है कुछ नहीं बोल रहा है, भगवान का हृदय दया से पूरित हो गया। और इसलिए दया से पूरित होने के कारण भगवान ने बलि को वो स्थान प्रदान किया जो किसी को प्राप्त नहीं है। भगवान दया से पूरित हो जाते हैं, भगवान दया से भर जाते हैं। सुदामा के प्रसंग में ऐसे देख सकते हैं कि सुदामा कितने गरीब थे, खाने के लिए नहीं होता था, और जब सुदामा गए भगवान के पास, और जब सुदामा का पैर भगवान ने धोना चाहा, थाली प्रसालन किया, थाली में आया, भगवान जब पैर धो रहे थे और भगवान ने सुदामा के पैरों को देखा तो उनका हृदय दया से भर गया कि कितना दुख उठाया सुदामा ने हमारे पास आने के लिए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग सो जल, नैनन के पग से जल से पग धोए, कि भगवान ने उस थाली के अंदर जो पानी आया था उसको हाथ नहीं लगाया। भगवान से सुदामा के पैरों को देखते थे और पैरों को देखते रहते, उनके आंख से आंसू गिरने लगा, दया से उनका हृदय पूरित हो गया। अनुकंपित हृदय भक्तों के भक्ति से उनका हृदय द्रवित हो जाता है, और उस दया के कारण जो उनके आंख से आंसू निकला उसी आंसू से भगवान ने सुदामा के पूरे पैरों को धो दिया। तो ये बता रहे सुदेव स्वामी की भक्तों के दया से भगवान द्रवित हो जाते हैं, भक्तों के भक्ति से भगवान द्रवित हो जाते हैं और इस प्रकार का भक्तों के साथ भगवान व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार बलि महाराज को भगवान ने यह अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार सुदामा को भी भगवान ने वो तो अपना पूरा लोक ही देने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी ने पकड़ लिया कि भगवान बहुत हो गया, हम लोग को रहने के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तो भगवान इस तरीके से पूरी तरह से अपना कुछ भी नहीं सोचते हैं। हाँ, अभी भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक सिक्योरिटी का पद, एक गेट पे खड़ा रहने वाला आदमी होता है, उसको हम कितना इज्जत देते हैं, उसका क्या सम्मान होता है लौकिक दृष्टिकोण से, लेकिन भगवान के लिए कोई माने नहीं रखता। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि भगवान का हृदय दया से द्रवित हो जाता है, और दया से द्रवित कैसे होगा भगवान का हृदय, तो बोलते हैं आत्मसमर्पण की भावना से, कि हम कितना शरणागति में भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं, कितना हमारा भगवान के प्रति समर्पण है, उस समर्पण के हिसाब से भगवान का हृदय भी भक्त के प्रति द्रवित होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जहां भगवान खुद अपने मुख से बोलते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो जनाधिपः, कि जो साधु के हृदय हैं उनके हृदय के अंदर मैं सदैव वास करता हूँ, वो हमारे हृदय के अंदर वास करते हैं, न वो मेरे सिवा कुछ जानते हैं न मैं उनके सिवा कुछ जानता हूँ। यह भक्ति की पराकाष्ठा, कि जब भगवान के सिवा हमारे दिल में कुछ स्थान न हो, हमारे मन में कुछ स्थान न हो, तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान खुद बोलते हैं नाहम तेभ्यो जनाधिपः, कि मैं भी ऐसे लोगों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। भगवान यहां तक बोलते हैं उसी प्रसंग में कि ये बैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, इतना बड़ा ऐश्वर्य भी हमको सुख नहीं प्रदान करता है यदि हमारे भक्त वहां न रहे तो। वहां भक्त रहते हैं हमारे सानिध्य में, इसलिए वहां का सुख हमको अच्छा लगता है। भक्तों के बगैर मुझे कुछ सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ सुख सुहाता नहीं है। तो यदि मैं सुखी होता हूं बैकुंठ में भी, बैकुंठ का सुख भोग के, तो अपने भक्तों के सानिध्य में, ऐसे भक्तों के सानिध्य में जो कि सदैव मेरा चिंतन करते हैं, मेरे सिवा उनके अंदर कोई भौतिक लोभ, भौतिक कामना, भौतिक इच्छा नहीं है। और जो कि बलि महाराज ने अपने चरित्र के द्वारा करके दिखाया, उनने समस्त लोक लाज इवन गुरु के अंदर नर्मति नहीं होना चाहिए, ईश्वर बुद्धि होना चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु का भी उन्होंने परित्याग कर दिया भगवान के लिए, गुरु के लिए भी स्थान नहीं रखा अपने हृदय के अंदर, उन्होंने सर्वस्व अपना भगवान का समर्पण कर दिया। तो भगवान ने भी अपनी इतनी बड़ी अनुकंपा उनके ऊपर प्रदर्शित की। तो ऐसा कह के, तो जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं कि बलि महाराज के चरित्र का वर्णन करना, सुखदेव स्वामी बोला कहां तक वर्णन करूं, तो हमारे लिए भी सीमित शब्द है, हम कहां तक वर्णन करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी दो श्लोक और बाकी है, तो अभी इस श्लोक को मैं यही विराम देता हूं। इसके बाद 28 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि सूत्र लोक का वर्णन सुखदेव गोस्वामी अंत कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अभी इसका विस्तार से वर्णन में 8वें स्कंद में करूंगा, अभी मैं इसको एंड करता हूं। इसके बाद सुतल लोक के नीचे महातल लोक आता है, तलातल नामक लोक आता है। तलातल लोक का वर्णन करते हुए बोलते हैं सुखदेव स्वामी कि यहाँ मैं दानव का राज्य है, यहाँ मैं दानव राजा है और वो राज्य करता है, और मैं दानव जो है समस्त प्रकार की तकनीकी विद्या में निपुण है, उस समस्त प्रकार के मायावियों का आचार्य है, उसके पास सब मायावी विद्या है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है, माया का अधिपति है। हाँ, नीचे के जो लोक होते हैं हम लोगों ने सुना कि बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, यदि स्वर्ग लोक का वर्णन किया जाए तो वहीं के सुनकर लगता है अच्छा ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे बिल्डिंग, ऐसे ऐसे उद्यान हैं, लेकिन उसको भी मात करने वाला लोक नीचे है, उसको भी मात करने वाले महल नीचे हैं, और वो सब महल, वो सब ऐश्वर्य, वो सब उद्यान जो बनते हैं वो कौन बनाता है, मैदानों बनाता है। तो कितना सफल तकनीकी है वो, इसके वर्णन से हम समझ सकते हैं। तो मैदानों बहुत ही कुशल मायावी है, समस्त मायावियों का आचार्य बोला गया इसको। हाँ, त्रिपुराधिपति, मयो नाम दानवेंद्र त्रिपुराधिपति, तो वो आचार्य है। तो यहां त्रिपुरारी शब्द आया है कि उसने शंकर जी को भी एक बार अपने बस में कर लिया, शंकर जी पर परास्त हो गए। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार सुर और असुर, देवासुर संग्राम हुआ, और इस युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया, दैत्य लोग पराजित हो गए। पराजित होके वो मैदानों की शरण में जाते हैं, मैदानों बोलता ठीक है चिंता करने की बात नहीं है, तो मैदानों ने अपनी तकनीकी विद्या का प्रयोग करके, जैसे आज हम देखते हैं कि बॉम्बे में कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर बिल्डिंग बन रहे हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, हाईटेक बिल्डिंग बनते हैं, सब देखे कभी कभी आश्चर्य होता है बाप रे कैसे बनाया होगा, ये कैसे बनाए होंगे, इतना लंबा हो, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, कैसे सब निर्माण होता होगा। तो मैं दानव भी बहुत कुशल तकनीकीज्ञ था। इवन कहा जाए कि जितना भी हम आजकल आविष्कार देख रहे हैं जो कि आंखों को चकाचौंध उत्पन्न करते हैं, हम आश्चर्य पड़ जाते हैं, तो ये सब जो भी विद्या आ रही है वो माया मैं नामक दानव का छोटा सा टुकड़ा होगा जो आज हम इस भौतिक जगत में तथा कि तकनीकी विद्या के माध्यम से देख रहे हैं। मैं दानव तो आचार्य है, हमारे सामने एक ही जाता है तो हम तो आश्चर्य होते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ आता है तो और आश्चर्य होता है, अरे कैसे, इसके बाद ये कैसे, इसके बाद ये कैसे। तो इसी प्रकार मैं दानव के अंदर कितना माया भरा होगा, कितना सृष्टि करता होगा, कुछ समझ नहीं सकते हैं। उसको आचार्य बोला गया, फाउंडर आचार्य है तकनीकी विद्या का, हाँ फाउंडर आचार्य। तो उसने भी दानवों के लिए बोला आप लोग चिंता मत करो। उसने तीन महल बनाए, बहुत ही बड़े बड़े महल, उसको त्रिपुर कहा जाए, जैसे कि रायपुर, कानपुर, ऐसे त्रिपुर, त्रिपुर उसका नाम दिया त्रिपुर। और तीन महल उसने बनाया और तीनों महल में पूरा साजो सामग्री था, धन, ऐश्वर्य, सोना, चांदी और युद्ध के लिए जो औजार होते हैं, सब प्रकार से पूरित वो महल थे। और वो महल हवा में तैरते थे और इतने आश्चर्यचकित करने वाले महल थे। तो मैं दानव बोला जाओ और आप लोग युद्ध करो अभी। तो जब मैं दानव महल में बैठ के गया युद्ध करने, देवता लोग से युद्ध शुरू हुआ, तो इतने मायावी ढंग से उसने बनाया था कि कभी कभी पूरे महल अदृश्य हो जाते थे, कभी कभी महल रहता था और महल के अंदर जो असुर है वो अदृश्य हो जाते थे। देवता लोग मान लो हिल गए महल के अंदर युद्ध करते करते, पहले तो दिखाई नहीं देता था वो महल, दिखाई नहीं देता यू हिलने के बाद तो बहुत दूर, लेकिन वो प्रकट होता था महल युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ। और कभी कभी वो अदृश्य हो जाता था, कभी कभी देवता लोग उसमें बाणों की वर्षा करते थे और महल में कोई नहीं होता था, सब असुर लोग अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार इतना आश्चर्यचकित करने वाला वो महल था, देवता लोग एकदम परास्त हो गए। और इस प्रकार इस अवसर को देख के असुर लोग बहुत ही खुश हुए कि अभी तो हम तीनों लोग को जीत सकते हैं, क्योंकि देवता लोग की बुद्धि चकरा गई, किसको युद्ध करूं, किसको मारे, पत्थर को मारे, पहाड़ को मारे, बिल्डिंग को मारे, कोई है ही नहीं उसके अंदर। और कभी उसे प्रकट हो जाते हैं, कभी पूरा बिल्डिंग ही गायब हो जाता है, पूरा फ्लैट ही गायब हो जाता है। और बड़े बड़े पुर थे वो, छोटे बिल्डिंग नहीं थे, पुर, पुर मतलब एक शहर छोटा, इतने बड़े बड़े महल उसने बनाए थे। तो ये देवता लोग परास्त होकर फिर भगवान शंकर की शरण में जाते हैं कि भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, हम कैसे इसका समाधान करें। शंकर जी बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं चलता हूं। शंकर जी आते हैं और शंकर जी के अंदर ही बहुत शक्ति है, शंकर जी अपने बाण मारते हैं और बाण मार के इस तीनों पुरों को धराशायी कर देते हैं। और इसके बाद मार मार के जितने भी उसके अंदर असुर थे, कोई असुर भाग नहीं पाते हैं, सबको शंकर जी मारते हैं और सभी असुर मर मर के नीचे गिरने लगते हैं। और इसके बाद इस महल को, जो उसने महल बनाया था, शंकर जी बाण मार के जला देते हैं, वो महल जल जाता है, उसके अंदर जितने लोग बैठे थे वो लोग भी मर जाते हैं। तो मैं दानों को पता चलता है, अच्छा शंकर जी ने ऐसा किया, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने तुरंत एक कुंड बनाया, कुंड बनाया, क्या बोलते हैं उसको, अमृत कुंड, उसने अमृत कुंड बनाया। और उसके अंदर उसने एक अमृत कुंड, उसका नाम है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि उस कुंड का नाम है, उसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको बोलते हैं मृत संजीवयी तारी, मृत संजीवयी तारी। और मृत संजीवयी तारी के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक आयुर्वेदिक दवा भी है जो आसो के रूप में होती है, और जो उसको, जो कोई मरणासन व्यक्ति है यदि उसको दिया जाता है तो कभी कभी उसके अंदर दोबारा प्राण आ सकता है। तो उस प्रकार की औषधि उस कुंड के अंदर भरी थी जो मैदानों ने खुद निर्माण किया, अपने से बनाया उसने। और उस कुंड का निर्माण करने के बाद जितने भी असुर गिरे थे सबको उठा उठा के लाके उसके अंदर डाल देता है, बोलता लाके डालो उसके अंदर। और जब उसके अंदर डाल देता है तो जब फिर असुर निकलते हैं उसके अंदर बाहर से, तो उनका जो शरीर का तेज है सूर्य के प्रकाश की भांति, हाँ शरीर वज्र की भांति कठोर होकर निकलता है। और इतनी विशाल मात्रा में सब असुर निकलते हैं क्योंकि सब लोग जी गए और बहुत ही शक्ति के साथ उसमें से निकले। उनका वर्णन है कि उनका सूर्य से, उनके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था, हाँ उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया था। और ऐसा करके फिर वो शंकर जी से युद्ध करने के लिए गए। अभी शंकर जी का कुछ काम नहीं कर रहा है, शंकर जी परास्त हो गए, शंकर जी परास्त होने लगे। और ये अवस्था भगवान से नहीं देखी गई, भगवान ने बोला तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि असुर जाकर लड़ रहे हैं, शंकर जी को परास्त करना आसान है, लेकिन शंकर जी जितने लोगों को मार रहे हैं सब आके कुंड में गिर जा रहे हैं, और जब कुंड में गिर रहे हैं तो फिर वो पैदा हो जा रहे हैं। तो शंकर जी को समझ में, कभी करूं क्या। तो भगवान से शंकर जी की दशा नहीं देखी गई। स्वाभाविक तो पता नहीं ऐसा क्या है शास्त्रों में कि शंकर जी कई बार मुसीबत पड़ जाते हैं और भगवान को उनको दया आ जाती है, तो शंकर जी यहां भी मुसीबत में पड़ गए कि अभी मैं क्या करूं। इसके बाद भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं ठीक है आप मेरा बछड़ा बनो, मैं गाय बनता हूं। और दोनों लोग जाते हैं उस कुंड के पास और उस कुंड का अमृत पीने लगते हैं। उस प्राणी से जाते हैं कि उस अमृत को हम सुखा देंगे, जब अमृत नहीं रहेगा तो जो मर जाएंगे दोबारा जिएंगे नहीं, तो उसको सुखाने के लिए जाते हैं। और जब वो अमृत का पान कर रहे थे गाय और बछड़े के रूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मा, जब वो पान कर रहे थे उस समय कई असुरों ने इस चीज को देखा कि एक गाय और एक बछड़ा अमृत कुंड का रस पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो महाराज जी का उस संदर्भ में कथा मैं सुन रहा था, महाराज जी बोलते हैं कि पहले के असुर भी थोड़ा गायों के प्रति सिंपैथी दिखाते थे, उनकी दया होती थी, गाय खा रही है चलो कोई प्रॉब्लम, गाय बछड़े खा रहे हैं खाने दो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज के असुर तथा कथित असुर के अंदर उतनी भी करुणा नहीं रह गई, उतनी भी दया नहीं रह गई। इवन जो रोड पे बेचारी गाय खाती भी है, जिनको खाने के लिए खिलाना तो दूर, गाय को रोड पे खाना नहीं मिल रहा उनको खिलाना तो दूर, चलो उसको हम काट देते हैं अपनी जीवा की तुष्टि कर लेते हैं। तो ये असुरों का स्वभाव है, कितने बड़े आज के समय में असुर भरे हुए संसार में, वहां उनकी जीवन उसके अंदर निहित है लेकिन वो असुर उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है गाय बछड़े खा रहे हैं खाने दो क्या प्रॉब्लम है कितना खाएंगे। और यहां आज रोड पे गाय चरती है, उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ नहीं है, चलो पकड़ के डाल दो कसाई घर में और काट दो, खिलाना नहीं है बल्कि उनको ही काट देना है, उनको ही खा डालना है। तो ये अंतर है आज की सभ्यता में, पहले के असुर भी थोड़ा सभ्य होते थे, थोड़ा उनके अंदर संस्कृति होती थी। यहां संस्कृति में देखेंगे मैं दानों के अंदर भी संस्कृति है। तो जब उन्होंने पूरा वो अमृत पी गए और जब अमृत पी रहे थे उसी समय मैं दानों को पता चला कि एक गाय और एक बछड़ा आगे अमृत पी रहे हैं। मैं दानों ने देखा और वो समझ गया, बोला कि अभी सब स्कीम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु की योजना है और यदि उनकी योजना है कि वो अमृत खाली कर देंगे और हमको परास्त करने की, तभी हमारे बस की बात नहीं है। अभी आप लोग अपना पराजय मान लो, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी हम लोग को हारना पड़ेगा क्योंकि उनकी योजना है, उनकी योजना में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, उनकी योजना सब लोग परास्त हो जाते हैं, सब लोग पराजित हो जाते हैं। और अभी आप लोग अपना हार स्वीकार करो और लड़ाई मत करो। और वो भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते, उस पर भगवान उसके पूरे अमृत को पी जाते हैं और फिर भगवान शिव बहुत आसानी से मैं दानों द्वारा जो निर्मित महल था या असुर थे उन सबको अच्छे से विध्वंस कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और नाश करने के बाद फिर वहां वो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो सातवें स्कंद के दसवें अध्याय में जो वर्णन है यही अंत हो जाता है मैं दानों की कृति का। मैं दानों के विषय में इतना ही वर्णन है कि वो त्रिपुर को जलाते हैं, तीनों पुर को खत्म कर देते हैं, इसलिए आज के श्लोक में उनका नाम त्रिपुरारी दिया गया है कि भगवान का एक नाम त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर उस तीनों पुर को जला देते हैं, जो अद्भुत था उसको भी जला देते हैं। और मैं दानों के संदर्भ में कथा आती है महाभारत के अंदर कि जब एक बार अग्निदेव को अपच हो गया था, अत्यधिक घी खा लिया था उन्होंने, किसी कोई राजा ने यज्ञ किया था और यज्ञ में बहुत ज्यादा घी की आहुति दी थी, इतना ज्यादा घी की आहुति दी थी खाते खाते इंद्रदेव को अपच हो गया, उनका प्रसाद पच नहीं रहा था तो बहुत परेशान थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि खांडव वन है एक और उसमें बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं और यदि उस औषधियों का तुम सेवन करो तो तुम्हारा अपच दूर हो जाएगा। तो इंद्र भगवान उस औषधि को खाने के लिए गए लेकिन वो जो उद्यान था खांडव वन था वो इंद्र का था और इंद्र उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तक्षक को सौंपा था, तो तक्षक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था और इंद्र भगवान उसको खा नहीं पाते थे। और मैं दानव भी कभी कभी जाकर उसकी शरण लेता था, उसके वहां रहता था, उस खांडव वन में रहा करता था। तो एक बार जब भगवान कृष्ण और अर्जुन यात्रा करते हुए खांडव वन पहुंचते हैं तो इंद्र भगवान उनसे अनुरोध करते हैं कि भगवान मेरी ऐसी समस्या है आप कुछ दूर करो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम खाओ, अर्जुन को बोलते हैं तुम आग लगा दो खांडव वन में, क्योंकि उनका अग्निदेव का भोजन अग्नि है आग है। तो अर्जुन को आदेश देते तुम खांडव वन में आग लगा दो, तो अर्जुन आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तक्षक को सौंपा गया था, तक्षक भाग के इंद्र की शरण में चला जाता है और वहां मैं दानव भी उस समय उपस्थित था तक्षक वन में खांडव वन में। तो वो भाग के आता है और अर्जुन का चरण पकड़ लेता है, दंडवत मार देता है अर्जुन को। तो भगवान मैं दानों को देखते हैं, तो भगवान को श्रीलीला पता थी कितना मायावी है ये, हाँ कितना दुष्ट प्रकार का आदमी है, कितना समस्या उत्पन्न, और छोटा मोटा समस्या उत्पन्न करते ही रहता था हर समय वो, हाँ समस्या उत्पन्न छोटा मोटा करते ही रहता था। तो वो अर्जुन की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान बोलते हैं कि इस आत्ताई का तुम वध कर दो, ये वध करने योग्य है। अर्जुन बोलते हैं भगवान ये हमारी शरण में आया, ऐसा कैसे वध कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं शरण में आया है लेकिन नंबर एक आतंकवादी है, ये परेशान करता रहता है हर समय, कुछ न कुछ बदलाव करते रहता है। हाँ जिस प्रकार पापा जी बोलते हैं कि आज के वैज्ञानिकों को भगवान मान लिया जाता है, भगवान की सत्ता को चुनौती दिया जाता है वैज्ञानिकों के माध्यम से, वैज्ञानिक ने क्या किया, ये किया, वो किया, वो क्या चमत्कार, चमत्कार में लोग फिदा हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया, क्या किया, वास्तव में उपद्रव ही हो रहा है संसार में, तथा कथित जितने भी आविष्कार हो रहे हैं आविष्कारों से लाभ तो हमारा हो रहा है, हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसका गलत असर भी पड़ रहा है। इवन प्रभुपाद जी यहां तक बोलते हैं कि यदि उनका आविष्कार माना जाए तो सबसे बड़ी आविष्कार कृति देश में क्या है इस समय, सबसे बड़ा घमंड सबको क्या है कि हमने क्या बनाया है, बोलते परमाणु बम, सब लोगों ने परमाणु बम बनाया है। हाँ सबसे बड़ा उनको गर्व होता है कि हमने परमाणु बम बनाया, हमारे पास भी परमाणु बम है, सब लोग चुनौती हमारे पास कितना कितना परमाणु बम है, और बोलते हैं किसके लिए है वो, बोलते विनाश के लिए, कि सबको एक दिन मरना ही है, लेकिन अभी इन तरह के विकास से क्या होगा कि सब लोग अपनी आयु से नहीं मरेंगे, इन असुर लोगों में कभी युद्ध होगा, विनाश गाय कट रही है, वे विचार फैल रहा है, नशा हो रहा है, मद्यपान हो रहा है, तो स्वाभाविक संसार का सब जो भगवान ने सिस्टम बनाया है सब बिगड़ रहा है, तो युद्ध होगा और युद्ध में क्या होगा, फिर परमाणु बम फूटेंगे और जो हमको एक एक करके मरना सब लोग एक साथ में मर जाएंगे, ये तथा कथित आज का आविष्कार है। तो कुछ ना कुछ लोग खुरापात माइंड से करेंगे ही, तो यही चीज बोलते हैं अर्जुन को भगवान के, मैं दानों को मार दो, लेकिन भगवान शरण में है। इसके बाद कुछ बात होता है और मैं दानों बोलता है कि भगवान मैं आज सच सच बोलता हूं कि आज से जो अर्जुन हमको बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे माफ करो, अर्जुन जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, अर्जुन आपके भक्त हैं, आपका अर्जुन विश्वास है, अर्जुन जो हमको बोलेंगे मैं वही करूंगा, अपने मन से मैं कुछ करूंगा नहीं। भगवान बोलते ठीक है, फिर वही अर्जुन लेके जाते हैं उनको इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में भी एक बहुत बड़ी कृति अपना दिखाता है भगवान, बोलते अर्जुन बोलते हैं ठीक है कुछ करके दिखाओ आप इंद्रप्रस्थ के लिए। तो इस इंद्रप्रस्थ के अंदर जो सभा भवन बना था उस सभा भवन की रचना मैं दानों ने की थी, जिसको देखकर धोखा खा गया था दुर्योधन, दुर्योधन को चक्कर आ गया कि जल है कि स्थल है, स्थल को जल, जल को स्थल समझ लेता है। एक बार मैं जब पहली बार अपने भक्ति वेदांत स्कूल गया था, ये स्टोरी मुझे याद आया, तो भक्ति वेदांत स्कूल गया था तो मंदिर है अपना जगन्नाथ जी का मंदिर है, और मंदिर से बगल में ये किचन है, जब प्रसाद यहां से जाता है तो लोग वहां, आप लोग देखे होंगे वहां जहां प्रसाद रखते हैं, और उसके बीच में एक शीशा का गैप है, मंदिर और उस किचन के बीच में शीशे का गैप है। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जगन्नाथ जी का अभिषेक चल रहा था, मुझे प्यास लगी तो मैं देखा मदन प्रभु वहां बैठे हैं, उनके पास पानी का ग्लास सब रखा था, प्लास्टिक का बॉटल रखा था, तो मैं गया जोर से और बहुत तेजी से अंदर हिला, और हिला तो मैं लड़ गया, और लड़ा अचानक मुझे समझ में नहीं आया, बहुत सर पर चोट लगा, जब देखा तो नीचे ऊपर देखना पूरा शीशा का वो दीवार लगा हुआ है। तो शायद अभी बाद में सुना कि इसमें भी घटना हो गई थी, ये पूरा शीशा फूट गया था सामने वाला, कोई व्यक्ति था वो सोचा मंदिर है, वो सीधे अंदर आया और बेग से मारा, बहुत जल्दी से उसको आना था मंदिर का दर्शन करने के लिए, और शीशा लड़का शीशा पूरा फूट गया, ये सामने वाला शीशा फूट गया, धोखा खा गया। तो इस समय भी कुछ ऐसी कृतियां उपलब्ध हैं जहां के हम धोखा खा सकते हैं, सब मैदानों का वंशज है, धोखा खा सकते हैं। तो वहां भी दुर्योधन धोखा खा गया, और इसके बाद वहीं से फिर दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की द्रौपदी के विषय में, कि वो सब महाभारत में स्टोरी है आप लोगों को पता है, उसके पीछे मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। तो मैं दानों के संदर्भ में भागवतम में और महाभारत में दो तीन जगह ऐसा प्रसंग मिलता है कि कितना मायावी था। लेकिन अर्जुन की शरण लेने के बाद उसका दिमाग बदल जाता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी या भक्ति सिंह ठाकुर भी बोलते हैं कि आविष्कार गलत नहीं है, देश हमारा आगे बढ़े गलत नहीं है, लेकिन यदि इन सब आविष्कारों का नेतृत्व एक भगवत भक्त के निर्देशन में नहीं किया जाएगा, कैसे इन चीजों को उपयोग करना है, किस चीज के लिए उपयोग करना है, तो इन सब चीजों से सिर्फ समाज में एक उत्पात मचेगा, उत्पात फैलेगा। हाँ उत्पात के कई माध्यम होंगे आविष्कार के रूप में, तो ये सब भक्तों के निर्देशन में होना चाहिए, जिसके लिए रूपा जी बोलते हैं कि हम समाज में ब्राह्मण का निर्माण कर रहे हैं जो कि समाज को गाइड कर सके कैसे सही चीजों को सही रूप में प्रयोग करना है, नहीं तो ये सब समाज में उत्पात मचाएंगे। तथा कथित जो आविष्कार के नाम पे देश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, इससे समाज का अहित हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं आज के श्लोक पे, जहां 29 नंबर श्लोक के तलातल के नीचे महातल श्लोक है, जिसके अंदर कद्रू की क्रुद्ध संतानें रहती हैं, जिसमें कालिया, तच्छक, कुहक, ये सब कुछ प्रजाति के सांपों का वर्णन है। तो सांपों में कई प्रजातियां होती हैं, कई प्रकार के सांप होते हैं। इसके बाद जब लास्ट श्लोक आएगा तो वहां नागलोक का वर्णन है, हाँ, जो नागलोक का वर्णन अलग करते हैं। यहां सुखदेव स्वामी बोलते हैं कि ये जो संतानें हैं, ये जो सांप की प्रजाति है जो महातल में रहती है, ये थोड़ा अलग टाइप के सांप हैं, इनको क्रुद्ध संतानें बोला गया, ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोधी होते हैं, हाँ, और ये कद्रू की संतानें हैं। तो इस श्लोक में तीन चीज समझने लायक है। पहला चीज बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये जो सांप हैं, इनका भी ऐश्वर्य बहुत प्रभावशाली है, बहुत ऐश्वर्यमान है, बहुत शक्ति है उनके पास। लेकिन तीन चीज बता रहे हैं यहां सुखदेव गोस्वामी श्लोक के माध्यम से। पहला बताते हैं कि क्रोधी होते हैं, ये स्वभाव से क्रोधी होते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि इनको गरुण से बहुत भय रहता है। इसके माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं सुखदेव स्वामी कि पहला ये बहुत क्रोधी होते हैं, दूसरा इनको गरुण से बहुत भय है, गरुण द्वारा सदैव सताए जाते हैं लोग, मारपीट होते रहता है, और तीसरा फिर भी ऐसे कुछ सांप है, ऐसी कुछ प्रजातियां हैं, ऐसे कुछ लोग वहां भी हैं जो कि सताए जाते हैं, क्रोधी होते हैं, लेकिन किंतु फिर भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ विहार करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे उसमें हैं, और इसी चीज को आशय बना के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में कि भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थितियों में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र तथा कुटुंबियों के मध्य अपने को सुखी मानता है। ये बहुत ही संसार का स्वभाव, प्रभुपाद जी उस आशय को ले रहे हैं। अभी महातल लोक में क्रोध है, क्रोध किसके बीच में होता होगा, किस पे क्रोध करते होंगे, सब तो वही लोग हैं, तो आपस में लोगों को क्रोध होता होगा, और क्रोध होता है तो क्रोध में क्या होता है, विनाश होता है, मारपीट करते होंगे, चिंता होती होगी, हाँ, गरुण का भय बना हुआ, कभी गरुण आएगा, मारेगा, पीटेगा उन लोगों को, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कि स्त्री और सुख और इसी चीजों में आनंद लेते रहते हैं। ये संसार का स्वभाव रूपा जी बोल रहे हैं कि संसार में बहुत विभिन्न कठिनाई है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, वास्तव में सुख नहीं है संसार में। क्यों नहीं, क्योंकि यहां लेबर ही लगाया गया है दुखालयम, हाँ, अभी हमको दवा चाहिए तो किसी स्टेशनरी के सामने दवा तो मिलेगी नहीं, हाँ, अभी आजकल स्वाभाविक है कुछ स्टेशनरी वाले भी या सामान दुकानदार वाले भी कुछ दवा रख लेते हैं, कम्बी फ्लाम है तो पुदीन हरा है, कुछ लेके काम चला देते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में पूरा पूरा रोग कहां समन नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार ये दुखालयम है, हाँ, ये दुखालयम है, लेकिन जिस प्रकार एक स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का दुकान होता है, वहां भी कुछ दवा रख लेते हैं, हाँ, दुख को दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन रख लेते हैं, दो चार सामान रोग दूर करने के लिए, उसी प्रकार इस संसार भी दुखालयम है। ये दुख से ऊपर स्टेशनरी पे स्टेशनरी का सामान नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी, दवा की आशा को नहीं करनी चाहिए, वहां दुख ही मिलेगा, लेकिन कुछ दवा मिल जाएगा, जनरली कुछ कुछ रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए। तो इसी प्रकार ये संसार दुख से पूरित है, दुख से भरा हुआ है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ परसेंट का सुख है, हल्का सुख है, जिसको लोग सुख मानते हैं, हालांकि सुख नहीं, वो भी सुख नहीं है। इस संसार में जो सुख है वो दुख की अवस्था को कम करने की अवस्था को सुख माना जाता है। से चैतन्य चैतन्य वर्णन आता है संसार के सुख के विषय में। इस संसार का सुख क्या है, बोलते हैं पहले जब राजा किसी को दंड देते थे तो जो दंडित व्यक्ति जिसको दंड दिया जाना होता था उसको नदी किनारे ले जाते थे सैनिक पकड़ के, और दो सैनिक दो बगल से हाथ पकड़ते थे, नदी के बीच में लेके जाते थे, उसको डुबोते थे नदी के अंदर, और डुबा के रखते थे दो मिनट, इसके बाद उसको ऊपर करते थे। जब उसको ऊपर करते थे थोड़ा सांस आता था, उसको लगता है वाह क्या सुख मिला, जिंदगी बच गई, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, वो जो उसको सांस मिलने का, सांस लेने का अवसर मिला, वो सुख नहीं उसके जिंदगी का, वो उसके दुख की अवस्था कम हुई है। जो भी बहुत दुखी था, बहुत दुख था उसको, उसका दुख थोड़ा कम हो गया, लेकिन पदम पदम यद विपदाम, फिर दुख आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे वो सांस ले लेगा, राजा के अधिकारियों को लगेगा कि नहीं अभी बच गया, फिर उसको डुबाएंगे, बस डुबाएंगे और निकालेंगे, डुबाएंगे और निकालेंगे। इस संसार का तथा कथित सुख ऐसा ही है। यहां सुख नहीं है, यहां हम एक दुख की अवस्था को कम कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कल आ रहे थे पूना से, पूना से हाईवे पे आए, पूना बॉम्बे हाईवे, बहुत अच्छा लगा। आगे बॉम्बे में पांच से चेंबूर पहुंच गए, चेंबूर से यहां आने में लोग 2.5 घंटा लग गया। इतना ट्रैफिक और सब लोग परेशान हैं। हम लोग भी परेशान हैं उसी में। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं, जो डेली जाने वाले हैं उनको कितनी परेशानी होगी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक में पूरा आदमी परेशान है, 2.5-3 घंटा सुबह और शाम, और सुबह शाम ही लगना है। आदमी जब घर सुबह निकलेगा तो ट्रैफिक, शाम कंपनी से आएगा तो ट्रैफिक, दोनों में ट्रैफिक मिलना है। दोनों में उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है, चिंता होती है। लेकिन ट्रैफिक से निकलते संघर्ष करते करते, हाँ पहले दिन पूरा कंपनी में बीता, बास का गाली सुनना पड़ा, ये काम वो काम सब करने के बाद गाड़ी में बैठा, गाड़ी का एसी है, ठंडा है, लेकिन दिमाग पूरा गर्म चल रहा है। हाँ, वो आया कैसे कैसे, घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने स्त्री पुत्र परिवार आदि के बीच पहुंचता है तो उसको लगता है वाह शांति मिल गई, घर पहुंच गया, थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन उस दुख की तुलना में जो सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक, कंपनी और फिर ट्रैफिक के बीच में बिताया और आगे थोड़ा सा लेस मात्र सुख मिलता है, वो सुख नहीं है, वो दुख की अवस्था कम हुई है। वो ट्रैफिक से निकला इसलिए उसको सुकून लग रहा है, लेकिन फिर कल ट्रैफिक में फंसना है। तो संसार का सुख ऐसा ही है, ऐसे संसार चल रहा है। एक और प्रसंग आता है कि संसार का सुख कैसा है, बोलते हैं मधुमक्खी और मधु। जिस प्रकार मधुमक्खी को कितना संघर्ष करना पड़ता है एक मधु का छत्ता निर्माण करने के लिए, दिन भर लगा देती है, जाती है, फूलों का रस चूसती है और चूसते चूसते महीना, दो महीना, तीन महीना में एक छत्ता निर्माण होता है फूलों के रस से। और जब उसमें रस भर जाता है तो रस से टेस्ट आता है, स्वाद आता है, और उस स्वाद उस सुगंधी को लेने के लिए सब मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती हैं। और जब सभी मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं तो आप देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां स्थिर नहीं बैठती हैं, भन 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 चलते रहता है। उनका क्या भन भनाहट है, वो जो मधु का स्वाद है उसका रस लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए उसमें कंपटीशन मचा रहता है। वहां तक सब लोग उस छत्ते का रस का आस्वादन करने के लिए पहुंचना चाहती हैं और एक दूसरे को डंक मारती रहती है, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, सब एक दूसरे को डंक दिन रात मारती रहती हैं। और बहुत उनको रसास्वादन उसका मिल ही नहीं पाता है, सिर्फ रस इकट्ठा किया उन्होंने, उसका रसास्वादन नहीं मिल पाता है और वो संघर्ष करती रहती है, वो सुख मिलेगा, आस्वादन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, शहद का शहद का। करते करते एक दिन मधु निकालने वाला आता है, क्या करता है, कपड़े में आग जलाता है, आग जला के लगा देता है, उसमें कितने मर जाते हैं या तो भाग जाते हैं छोड़ के, फिर वो मधु लेके चला जाता है। इसी प्रकार इस संसार में हमारा संघर्ष है, संघर्ष करते हैं, जीवन बीतता है, बैंक बैलेंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पैसा इकट्ठा हो जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन धन इकट्ठा करते करते सब कुछ करते करते हमारा बुढ़ाई आ जाती है, हमको रोग लग जाता है, हम भोग भी नहीं कर पाते हैं संसार का। और इसके बाद मृत्यु सर्वसहरा चाह, मृत्यु आती सब कुछ हर लेके चली जाती है, क्या मिला संसार में, कुछ भी नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी या सुखदेव गोस्वामी मानो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इसी प्रकार का चिंता हेड़ के संसार में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अज्ञानता बस इस संसार में लोग सुख ढूंढते हैं या सुख मान के बैठते हैं। और मैं अंत करूंगा एक प्रहलाद महाराज के श्लोक से, जिसमें प्रहलाद महाराज इसी तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैं एक नोट लाया था मेरा मिल नहीं रहा है, जब हिरण्यकश्यपु इसी चीज का आशय स्पष्ट करते हैं प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु जब पहली बार प्रहलाद महाराज अध्ययन करके आए संड और अमर के यहां से, तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु अपने गोद में बैठाता है और इतना स्नेह था प्रहलाद महाराज से कि बहुत दिन बाद मिला था तो अपने आंसुओं से प्रहलाद महाराज के सर को भिगो देता है और बहुत प्रेम से पूछता है कि प्रहलाद अभी तक तुमने क्या सीखा, हाँ क्या सीखा। पहला श्लोक, तो पहला श्लोक में बोलते हैं प्रभु जी, पहला श्लोक क्या है, तत्साधु बनने असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्दिग्न, हाँ गृह अंध कूपम, ऐसा करके श्लोक आया, हमको इतना याद नहीं है, जस्ट मैं आज नोट किया उसको, हित्वात्म गृह अंध कूपम हरि माश्रय। ओके, तो यहां सुखदेव प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि तत् साधु मन ने असुर वर्य देहिनाम, हे असुरवर, उनको पिताजी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हे असुरवर, क्योंकि उनके दिमाग में आसुरी सभ्यता थी, तो बोलते हैं कि हे, और जानते थे कि उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए संबोधन भी करते हैं असुरवर, हे असुरराज, हे असुरों के अधिपति, मैं इस संसार में उसी को उत्तम मानता हूं। असुरवर देखना समुद्दिग्न, थोड़ा श्लोक मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये जो संसार है, ये संसार सदैव समुद्विग्न, ये उद्विग्नों से, वे चिंताओं से परिपूर्ण है, चिंताओं से भरा हुआ है। यहाँ पद पद पे चिंता है, व्यथा है, दुख है। हाँ, क्यों दुख है, क्यों चिंता है? बोलते हैं असत ग्रहात, क्योंकि संसार में हमारा संबंध इस शरीर और शरीर के संबंधों को हम सुख मानते हैं, तो ये असत ग्रहात है, अर्थात हम ये शरीर हैं ना, शरीर संबंधी हमारे हैं, लेकिन संसार में तथाकथित जो सुख हम भोगते हैं, जैसे कद्रु की संतान भोग रहे हैं, जैसे तथाकथित भौतिकतावादी लोग भोग रहे हैं, हाँ, भक्तों की बात नहीं की जा रही, भौतिकतावादी लोग जो संसार का सुख भोगते हैं, जो कद्रु की संतानें भोग रहे हैं, ऐसे सुख किसके कारण है? असत ग्रहात, क्योंकि वो शरीर को अपना मानते हैं और शरीर संबंधित पति पत्नी परिवार पुत्र बच्चे को अपना मानते हैं। ये असत ग्रहात है, असत सुख है, इसमें कोई सुख नहीं है, चिंताओं से परिपूर्ण है, सिर्फ चिंता देता है, सिर्फ दुख देता है। हाँ, सुख तो लेस मात्र है, दुख की अवस्था कम करने को यहां सुख माना जाता है, सुख नहीं है। इसलिए हे पिताजी, हित्वात्म पाकम गृह अंधकूपम, हाँ, मेरा यही विचार है कि आप त्याग दें। किसको त्याग दें? बोलते हैं गृह अंधकूपम, ये घर, ये गृहस्थी, हाँ, ये संतान, ये पुत्र, ये परिवार, हाँ, कैसे जो आसक्त गृहस्थी है, जो सिर्फ पुत्र परिवार पत्नी बच्चे सगे संबंधी के अंदर ही जो सुख ढूंढा जा रहा है, ऐसे संबंधों को त्याग दो। क्यों? क्योंकि गृह अंधकूपम, ये ऐसे घर जहां भगवान नहीं है, जहां साधु संतों का सम्मान नहीं होता है, जहां भगवान की नित्य पूजा नहीं होती, आराधना नहीं होती, ये गृह अंधकूपम वो अंधे कुएं के समान है। अंधा कुआं क्या होता है? अंधा कुआं होता है, गांव में देखा जाता है कि मान लीजिए कोई बहुत पुराना कुआं हो गया, उस कुएं के अंदर जब उसका यूज नहीं होता तो बड़े बड़े घास आ जाते हैं, पूरा कुआं ढक जाता है, वो कुआं रहता है, लेकिन गाय पशु उसको घास समझते हैं और जो उस घास को खाने के लिए जाते हैं, उस कुएं के अंदर गिर जाते हैं और उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, फंस जाते हैं अंधे कुएं के समान। तो उसी प्रकार इस संसार के माया जाल के अंदर, जो माया का स्वरूप है, माया का वैभव, उसके अंदर सब लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो इस अंधकूप में नहीं फंसना चाहिए, इसको त्याग कर कहां जाना चाहिए? हाँ, वनम गतो धर्म हरिम आश्रय, कि वन में चला जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन मतलब वृंदावन में चला जाना चाहिए, और वृंदावन में जाकर क्या करना चाहिए? धरिम हरिम आश्रयत, कि हरि, भगवान हरि के चरण कमलों को धरना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, जिसके द्वारा इस विचित्र संसार जो कि माया मोह से परिपूर्ण है, जिसको समझना, जिसमें से निकलना, मम माया दुरत्यया, बहुत दुर्जय है, बहुत कठिन है, बिना भगवान के हरि का आश्रय लिए हुए तो इससे निकलना बहुत कठिन है। तो हे पिताजी, ऐसे गृह अंधकूपन को त्याग कर, ऐसे तथाकथित सुख को त्याग कर आप वन में जाइए और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कीजिए। तो जहां तक मेरा सामर्थ्य था, शक्ति था, जो आप लोगों के सामने श्रवण किया था, आप सब श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से मैंने अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश किया, यदि कोई गलती होगा तो आप लोग मुझे माफ करिएगा, समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, नेता गौर प्रेमानंदे।